نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 65 آیت نمبر 135 سے 147 سورۃ نساء اور پانچویں پارے کا یہ آخری سبق ہے. لیسن نمبر 65 آیت نمبر 135 to 147 سورۃ النساء. آیتوں پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہمارے سامنے کیا کچھ آنے والا ہے. آپ دیکھیے کہ سورۃ نساء کے آغاز میں دبے ہوئے لوگوں کی بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے ایسے لوگ جو دنیا میں شہادت حق کی گواہیاں دینے نکلے ہیں انہوں نے انسانیت کو اتنا خوبصورت نظام دیا کہ اس پہ عمل کرنے کے بعد لوگ کامیاب ہوں گے. پورے سبق کے اندر ایسے قوانین تھے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل پہ قائم ہے. عورتوں کو حق ملے، بچوں کو حق ملے، عورت اور مرد کی بانٹ ہوئی. اسی طرح اب سورت اپنے خاتمے کی طرف مائل ہے. اس سبق میں پانچواں پارہ پورا ہو رہا ہے اور ایک دو دن کے بعد سورت بھی پوری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے. آپ دیکھیں گے کہ اس پوری سورت میں عدل بہت ہے. آج کے سبق کا جو پہلا ٹاپک وہ بھی عدل ہی ہے. قوامین بالقسط شہداء للہ، یہ کیا ہے؟ عدل پہ بات ہوگی. دوسرا ٹاپک کیا ہے؟ رسمی ایمان کو عملی ایمان میں ڈھالو، زبان کے ایمان کو اب عمل کے ایمان میں لے جاؤ. بے یقینی کا ایمان ہے تو اس کو یقین میں بدلو، یعنی یہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کی دعوت دی جائے گی. اس کے بعد نفاق کے مراحل، انسان کیسے لمحہ لمحہ منافق بنتا ہے. پھر آیت 139 سے آگے کچھ آیتوں میں نفاق کی وجہ، روٹ کاز کیا ہے، اور وہ کہے غیروں سے دوستی اللہ کو چھوڑ کر. پھر آج کے سبق میں ہمیں اشارے ملیں گے کہ جب کوئی ایسی محفل برپا ہو جس میں اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے یا اس کا انکار کیا جائے تو ہمارا اس کے معاملے میں کیا رویہ ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آخری ٹاپک ہے منافق. بڑی ڈیٹیل سے پورے قرآن میں جہاں بھی منافقوں کی بات ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آیتیں اس کا کلائمیکس ہے کہ منافق کے دل، زبان اور اس کے عمل کے اندر کیا بے ربطگی ہوتی ہے. اور خاص طور پہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ آخری درجہ کیا ہے پھر نفاق کا، اور منافق کا پھر انجام کیا ہے، اور اسی کے آخر میں ہم نفاق سے بچنے کے چار طریقے دیکھیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جب اتنا کچھ ایک سبق میں ہو تو پھر ہماری کتنی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آئیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں اور یہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ کے کلام کو ہم آپ ہی کی مرضی سے سمجھیں، کوئی بات ایسی نہ ہم کر دیں صرف اپنی بات کو بڑا بنانے کے لیے، کچھ اور کرنے کے لیے، بلکہ جو آیتوں کے معنی اور مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے دیے اسی کو ہم اپنی زندگی میں رکھیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل کھول دے. آج آپ کو پتہ ہے کہ پانچویں پارے کے بعد ہم قرآن پاک کا 1/5 کر چکے، یعنی آج کا سبق جو ہے قرآن پاک کے پانچ پاروں کو پورا کرواتا ہے. 30 حصوں کو جب آپ پانچ میں کرتے ہیں تو چھٹا حصہ پورا ہو رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ اسی طرح پانچ پارے رہ جائیں گے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر دل کی دنیا نہ بدلی تو بات نہیں بنے گی. شروع کرتے ہیں آیت نمبر 135 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 135 تفسیر دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. کس کو کہا؟ مجھے اور آپ کو کہا. ہم سب کو بڑے پیار سے رب نے پکارا اور کیا کہا؟ کونو قوامین بالقسط، کھڑے ہو جاؤ، سٹینڈ لو، ڈٹ جاؤ. کس طرح؟ پوری قوت کے ساتھ. کیا کرنے کے لیے؟ عدل کو قائم کرنے کے لیے. کیسے کھڑا ہونا ہے؟ شہداء للہ، اللہ کے گواہ بن کر. صرف ایک جملہ اور آپ دیکھیے اس میں سے اردو کے چار جملے نکلے ہیں. ایمان والو، ڈٹ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ عدل کے ساتھ، اللہ کے گواہ بنتے ہوئے. قرآن پاک کی عظیم ترین آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے. सूरत आले इमरान की आयत नंबर 18 में हम पढ़ चुके, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और फरिश्तों और इल्म वालों ने भी यही गवाही दी। क्या? कायमम बिल किस्त, कि वो अदल का कायम करने वाला है। उस आयत में आप देखिए कि अल्लाह ताला की अपनी गवाही भी थी और इल्म वालों की भी गवाही थी। वहां भी बिल किस्त का लफ्ज था, यहां भी बिल किस्त का लफ्ज है। सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला इधर मुसलमानों को क्या कहता है। असल में अल्लाह ताला उनको वो मकसद याद दिलाता है जिसके लिए अल्लाह ताला ने उम्मते मुस्लिमा को पैदा किया, उम्मते मोहम्मदिया को उसके अंदर एक वो मुकाम दे दिया जो पिछले लोगों को उस हद तक नहीं मिला जहां तक हमें मिला गया। जब भी किसी को अल्लाह का गवाह बनना हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, जरा तसव्वुर में लाएं। ये खास तौर पे आयत कुछ खास मौके की तरफ भी इशारा देती है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते हैं कि एक दौलतमंद और एक गरीब का झगड़ा था, तो अल्लाह के नबी सल्लम का जो रुझान था कि वो हक पे होगा, वो फकीर की तरफ हो गया, गरीब शख्स की तरफ हो गया, कि ये जुल्म नहीं कर सकता क्योंकि अमीर लोग जुल्म करते हैं। तो इस पर ये आयत नाजिल हुई जो इसका अगला हिस्सा है। अगर उसको साथ ले लें तो फिर हम इसके ऊपर अपने अमल के एतबार से भी बात कर सकते हैं कि तुम इंसाफ करो, अदल करो, और इस अदल को किस अंदाज से करना है कि चाहे इस अदल की इज्जत तुम पे पड़े या तुम में से किसी और पे पड़े। कैसे? वलहु अला अनफुसिकुम, अदल और इंसाफ करना है चाहे ये तुम्हारे अपने खिलाफ हो। यहाँ अला का जो लफ्ज है ना, इसके नीचे डाउन एरो लिख लीजिए खिलाफ, ऑपोजिट के मानों में। जैसे आप देखें कि आप कुर्सी पर बैठे हैं, अगर कोई कह दे कुर्सी उस पर पड़ी है तो कुर्सी ऊपर आ जाएगी ना। तो पीछे भी ये बात बहुत दफा हुई कि अरबी जबान में अला यानी अपॉन के मानों में इंग्लिश में अगेंस्ट का मानी आ जाता है, यानी इट शुड बी। अगर आप कहते हैं ना ली, ली इज फॉर एंड अला इज अगेंस्ट, यानी कोई चीज आपके हक में है या आपके खिलाफ है और तुम्हारे अपने ही खिलाफ वो पड़े। अविल वालिदैन, या तुम्हारी उस गवाही का असर तुम्हारे वालदैन पे पड़े, यानी तुम्हें अपने माँ बाप ही के खिलाफ क्यों ना गवाही देनी पड़े, दे दो। और वल अक्रबीन, या फिर करीबी रिश्तेदारों पर ही तुम्हारे उस अदल और इंसाफ की जद पड़े, दे दो। इन यकुन गनी या नौ फकीरन, अगर वो होगा गनी यानी दौलतमंद औ फकीर, या फकीर कोई बात नहीं, फल्लाहु औला बिहिमा, अल्लाह उन दोनों से ज्यादा उससे प्यार करता है, यानी उन दोनों की निस्बत अल्लाह को ज्यादा प्यार है। और क्या ना करो, फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू, और ख्वाहिशों की पैरवी तुम्हें अदल से ना रोके। वइन तलबू औ तुरीदू फइन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीर, बस अगर तुम मुंह फेर लो या एराज कर लो तो अल्लाह ताला जो तुम करते हो उससे खबरदार है। इस आयत के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं। बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मामला पेश किया गया, एक फकीर और एक गनी झगड़ते हुए आपके पास आए, आपने अपना झुकाव फकीर की तरफ महसूस किया कि ये गरीब बेचारा ये उस पर क्या जुल्म करेगा, लेकिन असल में कसूर दूसरे का था। तो उस पर आयत आ गई कि किसी की गुर्बत की वजह से सिर्फ आप उसको सही नहीं कह सकते। बार दफ़ा होता भी ऐसे, और हमारे अपने सोसाइटी में ऐसे एक साइकिल और एक गाड़ी वाले का अगर झगड़ा हो जाए तो अमूमन लोग जो हैं वो साइकिल वाले को एडवांटेज दे रहे होते हैं कि हाय बेचारे को मार गया, लेकिन हो सकता है कि उसने साइकिल वहाँ खड़ा कर दिया जहाँ पे नहीं खड़ा करना था। तो किसी की दौलत या किसी की गुर्बत अदल और इंसाफ के रास्ते की रुकावट नहीं बनेगी। इसी तरह एक दूसरा कॉल है इसके बारे में कि ये आयत जो है बनू उबैरक का वाक्य जो पीछे हमने पढ़ा, जिस शख्स ने जीरा चोरी की थी उसकी तरफ इशारा है। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा आयत के अल्फाज पे गौर करें तो यहाँ कवामीन बिल किस्त है, और कवाम के बाद जब बा लग जाए, मुश्किल लफ्ज बोलूंगी, तो कवाम का सिला जब बा हो तो मानी होता है निगहदाश्त करना। अल्लाह ताला उम्मते मुस्लिमा को उनका सबक याद दिला रहा है कि उठो, खड़े हो जाओ, कायम कवाम, कायम जो कायम से मुबालगे का सीगा है, शिद्दत है, सारे कामों में इंसाफ से काम लो, अल्लाह के दीन को कायम रखने के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह के लिए गवाहियां दो, हर हाल में अदल करो, एक दूसरे के मददगार बनो, और ये काम करते हुए लिल्लाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा मतलूब हो। चाहे तुम्हारे सदल और इंसाफ की जद में तुम्हारे करीब तरीन रिश्तेदार ही क्यों ना आ जाए, तुमने उनको भी अल्लाह की बात पहुंचाते रहना है। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि इंसान को अदल करने से जो चीज़ रोकती है ना, वो ख्वाहिश नफ्स है। हाय, ये फैसला किया तो ये नुकसान हो जाएगा, अगर रिश्तेदारों को इस बात पे टोक दिया तो वो नाराज़ हो जाएंगे, तो उस पर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम अपनी हवा के पीछे ना लगो। यानी अदल के रास्ते की जितनी रुकावटें मुमकिन तौर पे हो सकती थी, उन सब को यहाँ जमा कर दिया कि खड़े हो जाओ, तुम आराम से नहीं बैठ सकते, तुम्हें अल्लाह ने एक बहुत बड़ा काम दिया है, इसके लिए तुम्हें अपनी जान के निजराने तो कभी कभी पेश करने पड़ेंगे, ईसार हर वक्त करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ दो, घर अपने मैनेज करो, अपने बच्चों को ठीक रखो, अपनी बीवियों का ख्याल रखो, उनको इल्म की रग़बत दिलाओ, ताकि अल्लाह का ये दीन गालिब हो। आप देखिए कि एक होती है जस्टिस और एक होती है सोशल जस्टिस। जिस सोसाइटी के अंदर इज्तमाही तौर पे जस्टिस नहीं होगी, यानी बीवी को उसका हक नहीं मिल रहा, कितने दिन वो घर चलेगा और कितने दिन उस मुल्क या उस इलाके के लोग जो हैं वो दूसरों को दीन की दावत देंगे? घरों में लड़ाइयाँ लगी हों तो दूसरों को किसी को दीन कौन सिखा सकता है? तो इस सारी चीज़ों में असल में अल्लाह ताला ये हम सबको पैगाम देते हैं कि तुम एक ऐसा निज़ाम दुनिया को दिखाओ जो अदल पे कायम हो। और हकीकत यह है कि सहाबा कराम इसकी बेहतरीन मिसाल थे। उनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि वो अल्लाह की बात के मुकाबले में किसी की बात नहीं सुनते थे, और उनको कुफर से नफरत थी, लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में वो अदल का दामन नहीं छोड़ते थे। वो वाक्या जो आपको एक आध सबक पीछे भी सुनाया था अब्दुल्ला बिन रवाहा का, कि अल्लाह के नबी ने उनको खैबर के खेतों और फसलों का तहमीना लगवाने के लिए भेजा कि हिसाब लगा के आओ कि कितनी फसल आई है, लेकिन जब यहूद ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, जिस हस्ती की तरफ से आया हूँ वो मुझे सबसे प्यारी है, और जिनकी तरफ भेजा गया उनसे सबसे ज़्यादा बुगस है, लेकिन ना उनकी मोहब्बत और ना इनका बुगस मुझे हक से रोक सकता है। आप देखिए कि अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ात पे अमल करके दिखाया। एक मौके पे कबीला मखजूमिया की एक औरत फातिमा नाम की चोरी के इल्ज़ाम में आ गई। बड़े कबीले की औरत थी, वो नहीं चाहते थे कि इसको सजा मिले और हमारे कबीले का नाम खराब हो, तो उन्होंने चाहा कि कुछ रिश्वत दे दिला के या कुछ सिफारिश डलवा दे। हज़रत उसामा को नबी सल्लम के पास भेजा वकील बनाकर, सिफारिश कर दें, सिफारशी बनाकर भेजा कि जाइए और आप कह दें कि इसको माफ़ कर दें। तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ कटवा देता। और आप देखिए कि हमारे सहाबा का जो निज़ाम था, अल्लाह अकबर। आज हम कहते हैं लीडर्स के लिए कोई और कानून और फॉलोअर्स के लिए कोई और कानून, सियासतदानों के और रंग हैं तो आवाम का और रंग है। वजह क्या है कि आज जो कवानीन बनते हैं बनाने वाले खुद उस पर अमल नहीं करते। आज हम अपनी ज़ात को हर चीज़ से एग्जेम्प्ट कर देते हैं, चूँकि मैं आपका बड़ा हूँ इसलिए, चूँके चूँके। लेकिन हमारे सहाबा ऐसे नहीं थे। हज़रत उमर फारूक का दौर था, माले गनीमत में कुछ कपड़ा आया, उसके बराबर टुकड़े काट कर हर एक को एक एक टुकड़ा दे दिया गया। हज़रत उमर के हिस्से में भी एक टुकड़ा आया जैसे दूसरों के आया। कुछ दिन के बाद लोगों ने उस कपड़े में हज़रत उमर को मलबूस पाया, यानी उन्होंने उसका कुर्ता सिला के पहन लिया। हज़रत उमर काफ़ी चौड़े ऊंचे लंबे जिस्म के थे। एक शख्स ने उनसे कहा कि उमर, जो कपड़ा हमें मिला था उसमें तो कुर्ते नहीं बने, थोड़ा था, ये आपका कुर्ता कैसे बन गया? अल्लाह अकबर, ज़रा सोचिए। हज़रत उमर ने कहा कि इसका जवाब मेरा बेटा देगा। इब्ने उमर को बुलाया गया, का जवाब दो आके, कहा कि असल में मुझे भी एक टुकड़ा मिला था, लेकिन मैंने अपना टुकड़ा बाप को दिया, दोनों टुकड़ों को मिलाकर मेरे बाप ने कुर्ता बना लिया। ये बात कितनी कहनी आसान है और अमल में कितनी मुश्किल है। ये था हम मुसलमानों का कहले पर, और आज क्या हो गया? कितना शोर मचाते हैं लोग, एहतसाब, ये करो वो करो, उनको पूछो, अकाउंट्स चेक होंगे, अब इनकी रिपोर्टिंग होगी या बैडिटिंग होगी, कुछ नहीं हो सकता जब तक के लोगों के दिल में अल्लाह का खौफ नहीं होगा। आप पढ़ के देखिए दौरे सहाबा के वाकयात, इंसान की अकल दंग रह जाती है। कि आपने सुना होगा उमरे सानी जिनको कहते हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज, तो एक दिन उनकी बीवी ने खाने के साथ मीठा रखा, कहा ये कहाँ से बन गया? कहा मुझे पता है आपको मीठा बड़ा पसंद है, तो रोज थोड़ा 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 बचत करती थी, तो आज वो इतनी हो गई कि ये मैंने आपके लिए एक मीठी चीज बना दी। कहा अच्छा, इसका मतलब रोज के खर्चे में इतनी गुंजाइश है कि तुम बचाओ, और कह दिया कि मेरा वजीफा कम कर दे। हमें समझ नहीं आता हम कहाँ से अपने मसाइल का हल लाएं। कहीं हम सियासी लीडरों को बुरा कहते हैं, कहीं हम मौलवियों को बुरा कहते हैं। मैं कहती हूँ लोगों को इस किताब से जोड़ दें, और अल्लाह कितने प्यार से कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालों तुम्हें क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें एक कंप्लीट वे ऑफ लिविंग दिया था, तुमने इसको क्यों सजा के एक किताब की सूरत में रख दिया? अगर चाहते हो कि दुनिया को अमन दो, चैन दो, गुरबत खत्म हो जाए दुनिया में से, ये सब कुछ, तो फिर आओ कवामीन बिलकिस्त शुहदा अलन्नास। देखिए बात फिर वहीं चली जाती है। ये लास्ट पूरा वीकेंड मैं इस आयत पे रही हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग द ट्रेनर कोर्स का जो थीम था वो यही था कि अगर उम्मत मुस्लिमा बनना है तो शहादत अलन्नास का हक अदा करना है, और उसके तरीके, वो कैसे लोग हों, उनका किरदार क्या हो, मेथडोलॉजीज क्या हो, इसी पे बात हम पूरा वीकेंड करते रहे लास्ट वीक। ऐसे लगता है कि अब तो कोई और काम ही नहीं अपनी नजरों में जचता इस काम के सिवा के शुहदा लिल्लाह कवामीन लिल्लाह। आप देखिए कैसा खूबसूरत एक मैसेज आता है ना, कोई किसी की हिमायत में खड़ा हो। वकील 4 पैसों के लिए लोगों का मुकदमा लड़ते हैं ना, हारे या जीते बाद की बात है, पैसे उनको मिल जाएंगे। फिर उसमें झूठ को सच बात दफा करना पड़ता है, क्योंकि अपने क्लाइंट को खुश करना है। बाद दफा साफ पता होता है कि यह कातिल है, लेकिन उसको बचाने की भरपूर कोशिश की जाती है, बचे ना बचे ये अलग बात है। लेकिन आप सोचिए जो शख्स अल्लाह के लिए गवाह खड़ा हो गया, देखिए आप इमेजिनेशन में लाएं तो आपको इस काम की खूबसूरती और उसका अंदाजा होगा। आज आप इसलिए सीख रहे हैं कि आप पहले सीखें, फिर तड़पें, फिर अपनी इसलाह करते हुए इंसानियत को फायदा दें। और अगर मैं सिर्फ अल्लाह के लिए आई हूं तो वल्लाही इससे बड़ा कोई ऑनर ही नहीं है। दुनिया में कोई क्लाइंट आपको वकालत के इतने पैसे नहीं दे सकता, और वो मुराद और वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे जो अल्लाह के इस काम के मिलेंगे। ये तो हमने इस काम को पता नहीं क्या बना दिया ना, मशीनी काम, रोबोट का काम। आप आज दफा इल्म भी हासिल करते हैं लेकिन अंदर रूह कोई नहीं होती आपके। मैं अक्सर सोचती हूँ एक ही कुरान है, कई कहते हैं पढ़ चुके हैं, बड़ी दफा पढ़ा हुआ है, दिल किधर है, हिला किधर है? फिर आपकी जिंदगी वही कई टुकड़ियों में बटी हुई है। वो कैसा पानी है कि जो आप जिस्म पे डालें तो जिस्म का कुछ हिस्सा तो गीला हो जाए और कुछ सूखा ही रहे, इज इट पॉसिबल? हाँ, जहां वैक्स लगा रह जाए फिर वहां तो पानी नहीं जाएगा, कोई पॉलिश लगा दें तो उधर तो पानी नहीं जाएगा। वरना जिसने इस कुरान के पानी को अपने सर पे डाल दिया, जिस्म का एक एक उज उसके अंदर नहा जाएगा। अगर आप पूरा कुरान पढ़ जाएं फिर आप बेचैन हुए बगैर रह नहीं सकते। आप देखिए कि हमारे पास बस दफा होता है कि इल्म बराए इल्म, लफ्जी तर्जमा बराए टेस्ट, तजवीद बराए खूबसूरत तिलावत, ग्रामर बराए ग्रामर कह लीजिए या उसमें मजीद तर्जमा। यानी मैं आप सबको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि ये जो आप भी आके रोज आके बैठ जाते हैं, तो जरा बैठ के सोचिए तो सही क्या बातें क्यों हैं। कवामीन बिलकिस्ती शुहदा अलिल्लाह बनने के लिए। ये ग्रामर कुछ नहीं है, ये तजवीद कुछ नहीं है, ये लफ्जी तर्जमा भी आपको मुझे नहीं बचाएगा। ये सारे टेस्ट पूरे नंबरों के बावजूद जीरो हो जाएंगे अगर इस पढ़ने के बाद मेरे और आपके असल काम के करने का किबला ठीक ना हुआ। और वो क्या था? कूनू कवामीन, जमा का सीगा, का ना होता एक, कूनू सब हो जो, इज्तमाईयत का मिजाज है कुरान का। रोड़ा बन के ना अटकते फिरो। आज हम दीन भी सीखते सिखाते हैं तो रोड़ों की तरह अटका अटकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिधर जिसका मुंह समाता है। क्योंकि एक बारिश की टुकड़ी नहीं बरस आती जब तक सारे बादल जमा होके एक जगह नहीं बरसते। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारा दीन का मिजाज इज्तमाईयत का भी नहीं रहा। हम कहते हैं कर रहे हैं, हो रहे हैं, अपना सवाब बढ़ा रहे हैं बस, लेकिन कवामीन बिलकिस्त कहाँ हो रहे हैं? आप अगर किसी को ग्रामर भी सिखाएं तो इस सोच से सिखाएं कि जब ये ग्रामर की पे अबूर पा के इस कुरान को लोगों के सामने पढ़े तो लोग के वाह, मुसलमान ऐसे होते हैं। आप तजवीद किसी को सिखाते हैं तो ये ख्वाहिश हो कि ये ऐसा खूबसूरत कुरान पढ़े कि दूसरों का दिल पिघलने लगे, जैसे उमर का दिल पिघलता था या अबू बकर पढ़ते थे तो दूसरों का दिल पिघलता था। फोकस एक ही है, बड़ा सा फोकस अपनी जिंदगी का बना ले, कवामीन बिलकिस्त शुहदा लिल्लाह, अल्लाह के गवाह बन जाओ। वो कहते हैं ना कि हम तो जीते हैं दुनिया में कि तेरा नाम रहे, मुमकिन है कि साकी ना रहे, जाम रहे। ये कुरान जामे हिदायत है, हम नहीं रहेंगे, कुरान रहेगा। ये सोच ले के दुनिया में निकला करें कि हमने कवामीन बनना है, अल्लाह के लिए बनना है, अल्लाह के हक को फैलाने के लिए बनना है शुहदा। फिर आप देखिए कि इसमें जो अलअदल है ना, ये अल्लाह का नाम है, अल्लाह ताला के जितने नाम है ना, जैसे मिसाल है रहीम फ़ाइल का वजन बनता है, फाइल या फ़ाइल के वजन पे आते हैं, लेकिन अलअदल सरापा अदल, यानी इस कायनात में अल्लाह का अदल इस तरह दिखता है कि उसने हर हक वाले को हक दिया। इसी सूरत में हमने विरासत के कवानीन में अल्लाह के अलअदल को पा लिया कि किस तरह अल्लाह ताला की ज़ात दूसरों को खूबसूरत तरीके से उसके हकूक देती है, और अगर उस प्यारी ज़ात के लिए मैं और आप काम करें तो क्या हमारी शान होगी। ये तो क़यामत के दिन पता चलेगा, जब दुनिया में इस कामों में रुलने वालों को अजर मिलेंगे। बाहर लोग कहते हैं क्या मसला है, क्या करें, और याद रखिए जब तक ये फोकस सीधा नहीं होगा पूरे कुरान तक हम नहीं पहुंचेंगे, बीच में लुढ़क जाएंगे, काफ़ी पढ़ लिया है, काफ़ी समझ आ गया है। नहीं, हमारा पढ़ना सिर्फ एक ट्रेनिंग कोर्स है। इसको आप यूँ समझिए कि जैसे कोई आर्मी में दाखिला ले, और दाखिला ले लिया, सब पढ़ लिया, ट्रेनिंग ले ली, फिर घर बैठ जाता है। क्यों लेता है दाखिला, क्यों ट्रेनिंग लेता है, कि सारी ट्रेनिंग को यूज़ करके दुश्मन के खिलाफ जाके लड़ाई करनी है। हम कुरान सीखने सिखाने वालों का भी हदफ क्या है कि हमने कवामीन अलिल्ला बनना है, शुहदा लिन्नास, इस तरीके से इस काम को करना है। गोया कि मैं आपको अगर खुश कर दूं, अल्लाह आपको खुशी रखे हमेशा, कि आप और मैं हम अल्लाह की फौज बनना चाहते हैं, आर्मी में दाखिला लिया है, और हमारी आर्मी हमारे हाथों में तलवारें और तीर नहीं होते, हमारे हाथों में कलम होते हैं, हम लोगों को ईमान की तरफ दावत देते हैं, और अल्लाह ताला कहते हैं कि देखो फला तत्तबिउल हवा। अमूमन देखिए नफ्स की ख्वाहिश, हवा पे पीछे बहुत दफ़ा बात होगी ना, हवा ख्वाहिश, ये जो हम कहते हैं ना हवा चल रही है, ये भी यही है, ख्वाहिश, फॉल्स डिज़ायर्स, झूठी ख्वाहिशें, तमन्नाएं, यानी तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हें अदल से ना रोकें। मतलब ये है कि जब तुम अल्लाह के दीन के लिए कुछ करना चाहते हो तो तुम्हारे सामने फिर दो ही रास्ते होते हैं। लिख लीजिए, जिंदगी के सफर में दो रास्ते बार बार आएंगे, जैसे आप रोड पे जा रहे होते हैं ना, तो अक्सर रास्ता सीधा जाता जाता दो में चला जाता है। एक वो रास्ता होता है जिसमें इंसान का अपना मुफाद होता है, ख्वाहिशें पूरी होती हैं, प्रोटोकॉल मिलता है, वाह वाह होती है, बहुत ज्यादा आप अपने आप को कहते हैं वाह क्या बड़ा काम है, बड़ी इज्जत मिल गई। लेकिन दूसरा रास्ता हक और इंसाफ का होता है, उसमें कोई इतना मुफाद भी नहीं मिलता, ख्वाहिशें भी नहीं पूरी होती, बल्कि पाबंदी लग जाती है। अब ऐसे वक्त में अमूमन लोग पहले रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चलना शुरू हो जाते हैं। जिनको अल्लाह का यकीन आ जाता है ना, वो तो कहते हैं कि नहीं, चाहे मेरे हक में या मेरे खिलाफ चलते ही जाना है। लेकिन जिनके यकीन में कमी होती है, जर्रा सी 19 से 20 की अपनी किसी जात पे, किसी मुफाद पे चोट पड़ी, तो वो कहते हैं सॉरी, वी कैंट गो एनी मोर, हम और नहीं चल सकते। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला कहते हैं कि जो जम गया, फला तत्तबिउल हवा अंदादिलो, अदल से ना हटा करो, ख्वाहिशों के पीछे ना चलो। जो ऐसे वक्त में उस रोड को नहीं छोड़ेगा ना, आप देखेंगे कि अल्लाह की जात उसको जरूर जमा लेगी, जरूर जमा लेगी। वइन तलवौ तुरिदु, और फिर भी मुंह फेरते हो, अगर फिर भी तुम्हें हक का रास्ता अच्छा नहीं लगता, तो फइन्नल्लाह काना बिमा तअमलून खबीरा। आप देखिए कि यहाँ अदल की बात है, कोई अदालती अदल नहीं है, लेकिन हर इंसान को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखा दिया कि अपने खिलाफ खुद फैसले करने पड़े तो करो, लेकिन हक का दामन ना छोड़ो। हम अमूमन गलत काम करके बहाने, जस्टिफिकेशन, एक्चुअली एक्चुअली हमारे सहाबा ऐसे नहीं थे। हजरत उमर का दौर था, रात को गश्त कर रहे थे, इनको किसी घर में कुछ गड़बड़ दिखी, उसके घर की दीवार से फलांग कर अंदर आ गए कि देखो अंदर क्या हो रहा है। जब अंदर गए तो देखा कि एक शख्स है, शराब की बोतल पास है, और एक खूबसूरत औरत भी है, यानी जिना फहाशी जो हद के काबिल गुना है वो सारे थे। उस शख्स पे मुकदमा चलाया, अगले दिन अदालत लगती है, कहा कि इस शख्स ने जिना किया और वट एवर जो भी देखा। उस शख्स ने कहा कि ठीक है मीरुल मोमिनीन, मैंने ये किया, लेकिन मैं अपने घर के अंदर कर रहा था, मैंने एक गुना किया, लेकिन आपने तो 3 गुना किए। नंबर 1, आप बगैर नौकरी अंदर आ गए, इजाजत नहीं ली, और दरवाजों की बजाय दीवार से पलायन कराए और कुरान के वो हवाले पढ़ दिए जिसमें आने जाने की बातें, तो आपने तो अल्लाह के कानून तोड़े। हजरत उमर को ये बात समझ आई, इस बात पे मुकदमा वापस ले लिया। अल्लाह अकबर। फला तत्तबियुल हवा, हम जैसे दौर का कोई दो शख्स होता कहता है इसको जेल में डाल दो, हथकड़ी, इसको टॉर्चर दो। इसने अमीर को बात की, इसने लीडर को बात की। हजरत उमर ने एक मौके पे कानून बनाया और कानून ये था कि कोई मर्द अपनी बीवी का हक में और 500 दिरहम से ज्यादा ना बांधे, क्योंकि लोगों ने फैशन के तौर पे और रोब देने के लिए हक में और बड़े बड़े बांधने शुरू कर दिए, जिसलिए कुछ मुखलिस लोगों को शादी करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि लड़कियों वालों के मुतालबे बढ़ते गए। तो हजरत उमर ने मिंबर से जाके कह दिया कि 500 दिरहम से ज्यादा कोई हक मेहर नहीं दे सकता। जब उतरे तो एक औरत ने पकड़ लिया, कहा उमर ये बताइए कि आपने ये कैसे कह दिया जबकि अल्लाह का कुरान तो कुछ और कहता है कि तुमने अगर किसी को खजाना भी दिया, खिंतार भी दिया, तो तलाक की सूरत में वापस नहीं ले सकते, देने से नहीं रोका, तो 500 दिरहम तो कोई खिंतार नहीं होते। फौरन वापस मेंबर पे जाके मजमे को जमा करके कहते हैं कि अभी उमर ने जो कानून बनाया था उसको वापस लेता हूँ, जिसका जो दिल चाहता है हक मेहर करे। एक औरत उस मसले को पा गई जिसको उमर ना पा सका। तो आप देखिए कि ये कौन करेगा जिसका अपना अंदर छोटा होगा। अपनी गलतियों को हम मानना सीखें, अपनी कमी कोताही को माने। हम घर वालों का नाम ले लें, बीवी का नाम, शौहर का नाम, माँ का नाम, सास का नाम, ये कभी भी बात नहीं बनेगी। आज हम देखिए कि अपनी जात के दिफा में बाज दफा दूसरे को मुजरिम साबित कर देते हैं। बच्चों में ये बात बहुत होती है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना चोरी ऊपर से सीना जोरी, गलती को छुपाने के लिए मजीद गलतियां कर लेते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं किसी ने नहीं। फिर आप देखिए इसमें माँ बाप का तस्करा हुआ, ये कैसे हो सकता है? मिसाल है कि माँ और भाभी का झगड़ा, आपको साफ दिख रहा है कि कसूर माँ का है। भाभी बेचारी क्या बोलेगी, अब आप क्या करें, चूंकि वो मेरी माँ है तो मैं भाभी के खिलाफ बोलूंगी? नहीं, अगर आपको कोई बीच में सालिस बनाता है, रिस्पेक्ट के तकाजों के साथ जिसका हक है उसका साथ देंगे। और ये भी नहीं कि आप उसका माँ होना आप उसको कह दें कि माँ है तो ये गलती होगी। यानी इतनी कड़ी अदालत है, हम में से कोई अदालतों में जाके फैसले नहीं करता, लेकिन रोज दिन रात हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है कि हम कभी ना हक हमायत कर जाते हैं और कभी ना हक किसी को ऐसे ही साइड दे जाते हैं। ये चूंकि ससुराली है तो बुरा ही होगा, चूंकि ये महकेक है तो ऐसा ही होगा। अल्लाह ताला कहते हैं वल अक्रबीन, कराबत वालों से भी नहीं करना। असबियत खानदान का है, मेरे गांव का है, मेरे शहर का है, नहीं। बाज दफा हम अमीर रिश्तेदारों की बहुत हमायतें करते हैं और गरीबों को पकड़ लेते हैं, कहते हैं जितना घर दाने उतना दे कमले भी सियाने, कि जिनके दौलत होती है उनके बेवकूफ़ बच्चे भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, और बेचारा गरीब का या बदसूरत बच्चा रोए भी तो कहते हैं इसको चुप कराओ, और अच्छा खूबसूरत बच्चा रोए कहते हैं कितना प्यारा लग रहा है रोता हुआ भी। फर्क है ना। अल्लाह ताला ये बताते हैं कि तुम किसी की साइड ना रो, फल्लाहुला बिहिमा, अल्लाह सबसे ज्यादा खैर ख्वाह, तुम किसी के बड़े खैर ख्वाह ना बनो। बाज दफा अपनी माँ से ज्यादा दूसरे खैर ख्वाह बनने की कोशिश करते हैं, कभी नहीं बन सकते।